चत्तारि मंगलम् अर्हन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णतु धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्त लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पर्णतु धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवली पर्णतु धम्मो शरणं पव्वज्जामि परम पूज्य भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य श्री गुरु विद्यासागर महाराज की जय। जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व होता है और अपने ही अभ्यास द्वारा अच्छे और बुरे संस्कार प्राणी के हृदय में दृढ़ होते हैं, पुष्ट होते हैं। जैसे नमस्कार मंत्र बोलने का जो संस्कार है, जिसने बचपन से नमो अरिहंताणम बोला उसको यदि कहा जाए कि नमो अरहंताणम बोलो तो मुंह से अरिहंताणम निकल जाता है। मंगलोत्तम शरण पाठ में लोगोत्तमा और लोगोत्तमा दोनों प्रकार के पाठ हैं। तो जिसने जैसा अभ्यास किया है उसके मुंह से वैसा उच्चारण निकल जाता है। और पिछले कुछ दिनों से आप लोग भी कुछ एक अंदर ही अंदर भावनात्मक अभ्यास कर रहे हैं, शीत योग शीत योग शीत योग। तो इसलिए सामायिक पाठ की कल जो स्वीकृति मिली थी यहां के लोगों को, तो उस अभ्यास के आधार पर विजय जी के मुख से निकल गया कि शीत योग की अनुमति हो गई। ये सब अभ्यास का प्रभाव है। अब वास्तविकता क्या है ये तो समय अपने आप प्रकट कर देगा, लेकिन हां जितना भी समय है उसमें धर्म लाभ अवश्य प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अपनी दुकान में जो है वो अपन देंगे, जिसको लेना हो लेता रहे। पर एक बात और भी है कि जहां मुनाफा होता है वहीं व्यापारी अपना हिसाब देखता है। वैसे शारीरिक स्वास्थ्य में जो लाभ हुआ उसमें गोरासा जी का एक प्रबल निमित्त था इस वर्ष, और बिना बोले इनके अंदर में भी कुछ ऐसी भावनाएं आई। ये जो संपर्क का एक स्वाभाविक प्रभाव है कि बिना बोले इनके अंदर भावना आई कि महाराज हमें ये पिच्छी दे दो, पुरानी वाली, उस समय की बात है। अब तो खैर वो चली गई, और फिर अपने आप ये कहने लगे कि हम ऐसे ऐसे व्रत नियम लेने को तैयार हैं। तो अब तो पिच्छी चली गई, अब क्या विचार है आपका? मैंने उनके भाव तो अभी भी ज्यों के त्यों हैं, और बल्कि वो अपने मुख से कह रहे हैं कि भाव और भी बढ़ गए हैं। वैसे 80 से ऊपर उनकी आयु बीत चुकी है, पर फिर भी चेहरे पर जो प्रसन्नता है उससे मरीज की आधी बीमारी तो वैसी दूर हो जाए। एक बार स्वास्थ्य के विषय में जो योग पर कुछ उपदेश हुए थे रविवारों के दिन, तब एक श्लोक बताया था कि बीमारियां क्यों होती है। आपको शायद ख्याल हो, 6 कारणों से बीमारियां होती है। अत्यंबुपानाद विषमाशनाच दिवाशयाद जागरणाच रात्रौ निरोधनान मूत्र पुरीशयोश्च षड्भिः प्रकारैः प्रभवन्ति रोगाः। जरूरत से ज्यादा पानी पीने से, असंतुलित भोजन करने से, दिन में सोने से, रात में जागने से, मल का निरोध करने से और मूत्र का निरोध करने से भी रोग उत्पन्न होते हैं। और इन 6 चीजों से आप बचो और चिंता करना ना छोड़ो तो भी चिंता से रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे कुछ अस्वस्थता के कारण हैं। प्राय इस जगत में लोग शारीरिक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सिर दर्द हुआ तो एनासिन या कोई और दूसरी दवाई ले लेते हैं, ऊपर से भी कुछ लगा लेते हैं। पेट में दर्द हुआ तो और कुछ कर लेते हैं, और कोई शारीरिक व्याधि हुई, बुखार चढ़ गया तो भी गुरासा जी के पास या और कहीं चले जाते हैं। माने शरीर में जहां कोई गड़बड़ी हुई तो तत्काल उसका उपचार करते हैं, पर जीव का जीवन अकेले शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं चलता। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी बड़ा मेल होता है। अंग्रेजी में तो एक कहावत है, साउंड बॉडी साउंड माइंड। शरीर बढ़िया होगा तो मन भी चंगा रहेगा। तो मानसिक स्वास्थ्य की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। मानसिक स्वास्थ्य कैसे बिगड़ता है? और मन की बीमारियां है कौन सी? तो मनोविज्ञान पढ़ के देखो, या साइकियाट्री नाम का एक शब्द सब्जेक्ट आता है मेडिकल साइंस में, वो मनोविज्ञान से अलग है। और उस सब्जेक्ट में मन नाम की चीज स्वीकार नहीं की गई है, लेकिन फिर भी उसमें ऐसी कई बातें आई हैं। तो साइकियाट्रिक्स में डिप्रेशन आदि बहुत सारी चीजें आती हैं, अब उसकी विशेष जानकारी तो उन डॉक्टर्स के पास है जो विशेषज्ञ हैं। कई प्रकार की कुंठाएं संसारी प्राणी के अंदर बैठी रहती है। आप जानवरों में भी देखिएगा कि जिस जानवर को ज्यादा लाड़ प्यार मिलता है उसकी प्रवृत्ति अलग होती है, और जिसको सब लोग मारते हैं उसकी प्रवृत्ति अलग होती है। आप उसको अगर प्रेम से भी बुलाओगे तो फिर वो डरेगा, क्योंकि उसके अंदर वैसी एक कुंठा निर्मित हो चुकी है। इसी प्रकार मनुष्यों में भी ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है। कई लोग ऐसे हैं जो कभी इस सभागृह के भीतर प्रवेश नहीं करते, उनके अंदर न जाने एक ऐसी बात है कि उनको लगता है कि अपन बाहर ही अच्छे हैं। और कई ऐसे भी लोग हैं कि जिनको बाहर बैठना जमता ही नहीं, अंदर भले फुल हो लेकिन फिर भी वो आकर के कहीं ना कहीं जगह निकाल लेंगे। कई ऐसे हैं कि जिनको हफ्ते में एकाध बार उपदेश मिल जाए तो संतोष है। कई ऐसे हैं कि जिनको दो बार न मिले तो तकलीफ होने लग जाए। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के अंतःकरण के भाव हैं इस मनुष्य जीवन में। कई लोग सुनने के शौकीन हैं, कई लोग सुनकर के कुछ विचार भी करने वाले हैं, कई लोग उसमें से विश्लेषण करके जो अपना सकते हैं उसको अपनाने भी वाले हैं। कम है, ज्यादा आप फूल मत जाना, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और कई लोग सोचते हैं कि चलो एक घंटा निकल गया। मैंने अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, ये सब मानसिकताएं कहलाती हैं। और कई प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस मनोविज्ञान के विषय में बताए जाते हैं, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। मानो वो व्यक्ति कभी अपने को छोटा समझ ही नहीं सकता, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो अपने को हमेशा छोटा ही समझता रहता है। हीन भावना, तो हीन भावना और अभिमान दोनों ही बाधक है। तो शरीर की बीमारी को व्याधि कहते हैं, मन की बीमारी को आधि कहते हैं। और आत्मा की बीमारियां उपाधि कहलाती हैं। अब इसमें थोड़ा सा गौर करिएगा, क्योंकि आपने तो संभवतः यही सोचा हो कि शारीरिक बीमारी और मानसिक बीमारी, इसके सिवाय कोई तीसरी बीमारी तो हो नहीं सकती। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और एक तीसरा स्वास्थ्य होता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। और उस आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए ही ये सारे धर्मोपदेश हैं। ये धर्मोपदेश केवल मन की शांति के लिए नहीं है, मन की शांति से और ऊंची चीज है धर्म। उसमें मन की शांति तो अपने आप समा जाती है, और वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। और इसका उल्लेख आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लगभग 1800 वर्ष पहले किया था, उनके द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र की जो प्राचीनतम टीका है वह आज कहीं पड़ी हुई है। और किसी का इतना पुण्य नहीं है कि वहां से उसको प्राप्त कर पाए। अब तक तो कम से कम उसको कोई प्राप्त नहीं कर पाया है, है कहीं ना कहीं। उस टीका का नाम है गंधहस्ती महाभाष्य, और कहते हैं कि हजारों श्लोका ग्रंथाग्र प्रमाण वह विशाल टीका है। और आचार्य समंतभद्र महाराज पशु पक्षियों की भी भाषा के जानकार थे, बड़ी अद्भुत टीका। हां, दूसरी टीका आज उपलब्ध है जिसके आधार पर यहां पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का स्वाध्याय संपन्न हुआ, यद्यपि अभी जो नाम गिनाए गए चौमासे में जो जो आपको चीजें सुनने मिली, सीखने मिली, पढ़ने मिली, उसमें वो नाम एक रह गया था। वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था तत्वार्थ सूत्र का, और इतना सब पढ़ने के बाद भी चूंकि आध्यात्मिक स्वास्थ्य मनुष्य को सुलभ नहीं होता, इसलिए कई बार ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद भी भावों में जैसी स्वच्छता आनी चाहिए, जो हृदय में निर्मलता आनी चाहिए, पवित्रता, वो आ नहीं पाती। स्वाध्याय कर लिया, कई वर्ष हो गए, और अंदर एक बात बैठी रहती है कि हां हम उस ग्रंथ को पढ़ चुके हैं, भले आगे चल करके मंगलाचरण तक याद न रहे, लेकिन अंदर एक ये भी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स है कि अरे वो तत्वार्थ सूत्र पढ़ चुके हैं हम, महाराज जी के चौमासे के समय पढ़ा और डाला, कहां डाला ये नहीं पता। जीवन में अगर डल जाता तो फिर तो ऐसे शब्द नहीं निकल सकते थे, तब तो लगता कि इसको फिर से पढ़ना चाहिए। सही स्वाध्याय करने के बाद लगता है कि पुनः इसको और देखा जाए, और ऐसे पढ़ लो तो लगता है कि चलो ये एक उपलब्धि हो गई। उपलब्धि यानी कि मैंने अपने रिकॉर्ड में एक नाम और ऐड हो गया, ये मतलब बिजनेस माइंड जिसका रहता है वो सोचता है कि बस कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितना जुड़ रहा है, पर वास्तव में इसका नाम जुड़ना नहीं है। अपने को ग्रंथ नहीं जोड़ना, अपने को उससे जुड़ना है। इतना फर्क है दुनियादारी में और धर्म में। दुनियादारी में आप सब चीजों को जोड़ते हो, लेकिन धर्म में अपने को जुड़ना पड़ता है उसमें। फिर अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता है तो वह अंतरंग स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य धीरे धीरे इतना पुष्ट होता है कि फिर वैराग्य डरावना नहीं लगता। आमतौर पर वैराग्य से लोग घबराते हैं, तपस्या का नाम सुनते ही सोचते हैं कि भाई ये तो उन लोगों का काम है, अपना काम नहीं है, ऐसा अंदर ही अंदर एक भाव बनता है। पर जब वह स्वास्थ्य प्रकट होता है तब वैराग्य और तपश्चरण के सिवाय और कहीं कोई रस नजर नहीं आता। मन का रस अलग, शरीर का रस अलग, और एक आध्यात्मिक रस अलग है। और ऐसा नहीं सोचना कि ये सारा का सारा बिल्कुल अलग है, इनका भी परस्पर थोड़ा थोड़ा इंटरकनेक्शन, आपसी संबंध है। जैसे साउंड बॉडी साउंड माइंड वाली बात आई थी, शरीर चंगा होता है तो फिर मन भी प्रसन्न रहता है। देखो सिर दर्द देता है, फिर जब ठीक हो जाता है तो कैसा लगता है, चेहरा बदल जाता है। दो फोटोज ले लो, अपने आप पता चल जाएगा कि कितना परिवर्तन आया। इसी प्रकार आध्यात्मिक स्वास्थ्य जब बढ़िया हो जाता है तब उसकी पूर्ण स्वस्थ अवस्था तो साधु अवस्था है, क्योंकि साधु जैसे निर्द्वंद दुनिया में कोई मिलने नहीं वाला। पर उस निर्द्वंदता को प्राप्त करने के लिए साधुओं को भी प्रारंभिक अवस्था में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो भी सहज नहीं है, उसके लिए भी पुरुषार्थ होता है। और देखिए कषायों के साथ और शरीर के धातु उपधातुओं के साथ कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यद्यपि आज शास्त्र जो है वो धीरे धीरे घटते घटते बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन बहुत गहरी बातों का वर्णन आचार्यों ने किया है। कभी कभी आश्चर्य होता है कि इतना ज्ञान वो कैसे अपने अंदर धारण करके रखते होंगे, इतनी सारी चीजें उनको कैसे याद रह पाती होंगी। जैसे वात पित्त और कफ, इनका चार कषायों के साथ कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनाया है। क्रोध का संबंध बैठा है पित्त के साथ, और मान का संबंध बैठा है वात के साथ, और लोभ का संबंध बैठा ना कफ के साथ। और वात पित्त कफ तीनों की विषमता जहां आ जाती है तो मन वचन काय तीनों में कुटिलता, वो कौन सी कषाय होगी? माया कषाय। इसी प्रकार ज्योतिर्विद्या में भी आयुर्वेद का संबंध है, कषायों का, ज्ञानावरण आदि कर्मों का पूरा विभाजन आता है। यद्यपि वो ग्रंथ उतने आज सुलभ नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जब उस विषय को देखते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर एक विषय आता है उपासक अध्ययन ग्रंथ में वात्सल्य अंग की कथा में, कि जब वो बलि ब्राह्मण के सामने विष्णु कुमार वामन के रूप में ऐसे हाथ करते हैं, वो जलधारा करता है, तीन डग भूमि दान में देता है, तब एक ज्योतिषाचार्य बलि के हाथ पकड़ लेता है कि नहीं जलधारा नहीं करो, ये जिसका हाथ है ये एक ऐसे व्यक्ति का हाथ है जो कभी दुनिया में किसी के सामने याचना नहीं कर सकता। बलि उत्तर देता है कि जो आंखों से दिख रहा है वो सच माने या तुम्हारा ज्योतिष हम सच माने। लेकिन वो जो ज्योतिषाचार्य था वो और भी प्रमाण देता है, और ये सारे प्रमाण आचार्य सोमदेव सूरी महाराज ने उपासक अध्ययन ग्रंथ में दिए कि हाथ में कैसे चिन्ह होने का कैसा फल। फिर अंत में इतना कहता है वो ज्योतिषाचार्य कि ये उस व्यक्ति का हाथ है जो दुनिया को देने की ताकत रखता है, ये कभी किसी के आगे पसर नहीं सकता। लेकिन फिर भी बलि जो थे अभिमान में चूर थे, उस समय 7 दिन का राज्य मिला था ना, वैसे अभी चंद दिनों का मनुष्य जीवन आप लोगों को मिला है, तो आप लोगों भी बलि के समान मत कर बैठना। और उसने धारा कर दी और फिर तीन डग भूमि जो नापी विष्णु कुमार महाराज ने, सो आप सब जानते ही हैं कितने बड़े थे वो तीन डग। तो ऐसे कुछ विवरण आते हैं, और कौन सा जीव किस गति से आया है, किस गति में जाने वाला है, उसके भी कुछ चिन्ह श्रावकाचार संग्रह में उपलब्ध है। वैसे 5 भाग उसके प्रकाशित हुए हैं, उसमें लगभग 35 श्रावकाचारों का संग्रह है। तो अगर स्वाध्याय में रुचि है आप लोगों की, तो अध्ययन करके आप देखोगे तो पता चलेगा कि जैन साहित्य में कितना अपार खजाना भरा पड़ा है। वास्तु के बारे में, सामुद्रिक के बारे में और भी अनेक अनेक विषयों को लेकर के आचार्यों ने वर्णन किया, लेकिन फिर भी आचार्यों ने आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा जोर दिया। और उसके लिए फिर मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखना पड़ता, क्योंकि मन अगर अस्वस्थ हुआ तो फिर कहां अध्यात्म और कहां आत्मा। तनाव में ये सब चीजें थोड़ी चलती है, तनाव में तो दवाई याद आती है या फिर और कुछ याद आता है, धर्म भूल जाते हैं लोग। और कदाचित परिस्थितिवश कुछ अनुष्ठान भी कर लेते हैं लोग। कबीरदास जी ने इसी परिस्थिति को देख करके एक दोहा लिखा था, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। वैसे अगर शब्द आगे पीछे हो जाए तो भी दोहे का बहुत सटीक अर्थ प्रकट हो सकता है। जैसे सुख सुविधाओं में तो लोग अच्छे से भजन कीर्तन कर लेते हैं, पूजा में भी शामिल हो जाते हैं, और जब विपत्ति आती है तो फिर इधर उधर भागते हैं कि भाई यहां पूजा करने से क्या होने वाला है, चलो वहां चलो उनके पास जाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी श्रद्धा मजबूत नहीं है ना, वो क्रिया कर रहे हैं लेकिन फिर भी उस क्रिया के प्रति आस्था दृढ़ न होने के कारण जब मुसीबत आती है तो फिर लगता है कि भाई हम इतनी रोज पूजा करते हैं फिर भी ये संकट आ गया, कोई दूसरा इलाज कराना पड़ेगा। वास्तव में यदि सही ढंग से भगवान की आराधना करते तो कब का बेड़ा पार हो गया होता। कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतिम कुछ छंदों में इतने मार्मिक भाव प्रस्तुत किए हैं आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी ने। वो कहते हैं कि यदि आपका नाम भी मैंने सच्चे दिल से लिया होता तो ये विपत्ति रूपी नागिन मेरे पास नहीं फटकती, पर ये विपत्ति रूपी नागिन मेरे आसपास मंडरा रही है, इसका मतलब ये बात निश्चित है कि मैंने आपका नाम तक सच्चे दिल से नहीं लिया। लिया वैसे देखो अहिंसा परमो धर्म की जय आप लोगों में से कितने लोग बोल जाते हैं जब यहां से जयकार लगाते हैं। ये एक सभा का मंगलाचरण होता है, एक तो आप लोगों का मंगलाचरण है और फिर एक वक्ता का मंगलाचरण होता है। जयकार है या फिर ओम का पाठ है या फिर नमस्कार मंत्र है, ये सब मंगलाचरण होते हैं। मंगलाचरण में ये तीनों प्रकार के विकल्प आ जाएंगे, एक तो नमस्कार, एक जयकार और एक ओंकार। तो इसमें अहिंसा परमो धर्म की जय आप लोग कितने लोग बोल जाते हैं, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया कि कमर पर जो बेल्ट है वो किस वस्तु का बना हुआ है? ये पता है हमें कि बहुत सारे लोग तो उस चीज का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो करते हैं उनके लिए ये बात विचारने योग्य है। और अभी रवि जी ने एक रैली की बात कही, क्योंकि संघ की ओर से एक ऐसा संकेत आया था कि निर्यात के विरोध में रैली होनी चाहिए। वैसे रैली के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किए जा सकते हैं। ये तो एक बाहरी रूप हो गया रैली, कुछ अंदर से भी काम हो सकते हैं। जो पूरा एक गठबंधन है ना, भारतीय सरकार का एक गठबंधन है, तो वहां भी हर गांठ पर अपन प्रभाव डाल सकते हैं। जो खास निकट लोग हैं उनके माध्यम से इस बात को ऊपर उठाया जा सकता है, और अपने अपने स्तर पर तो हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर सकता है। चिट्ठी डालना तो हर व्यक्ति के लिए संभव है, 15-25 पैसे की कोई चिट्ठी ले ली और उसमें कुछ अपनी भावना लिखकर। और फिर वो चिट्ठी चली जाएगी, आप कहोगे कि ऐसा कोई प्रैक्टिकल करके देखा क्या कभी किसी ने, तो उसका उत्तर है कि देखा है, और उसका बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है। पटियाला में जो डेरा बस्सी करोड़ों रुपयों की लागत में एक यांत्रिक कत्लखाना, माने मशीन से सब पशुओं का वहां पर वध होने का प्रावधान था, उसके लिए बहुत सी चिट्ठियां गई, पर इतना जरूर है कि अकेले चिट्ठियों मात्र से काम पूर्ण नहीं, क्योंकि सबको मिलजुल करके करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्या अकेले गांधी जी ने भारत को आजाद किया? कोई कह सकता है क्या कि सिर्फ गांधी जी ने आजाद किया भारत को? जो आजादी की लड़ाई वर्षों से लड़ी गई और जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हो गए, उनको अगर आप भुला देते हो तो फिर इससे बड़ी गद्दारी और क्या हो सकती है देश के प्रति। जिन्होंने अपनी जान दे दी भारत मां को आजाद करने के लिए, उनके बलिदान को कैसे भुलाया जा सकता है? पर हां, वो बहुत जबरदस्त पुरुषार्थ था, और सभी शहीदों की यही भावना थी कि हमारी यह सोने की चिड़िया आज पिंजड़े में कैद हो गई है, ये आजाद हो जाए। पर उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह आजादी आगे चल करके कैसे दिन दिखलाने वाली है, क्योंकि देश अंग्रेजों से आजाद हुआ और किसी से आजाद नहीं हो पाया, और बहुत सारे बंधन थे जिसमें जकड़ गया, व्यसनों में जकड़ गया, और स्वतंत्र समझकर स्वच्छंद सा भी हो गया, काफी कुछ हो गया, और कुल मिलाकर भारतीय संस्कृति का जो पुराना रूप था उसमें बहुत विकार पैदा हो गया। पहले माता पिता को बच्चे प्रणाम करते थे, अब बाप हाथ जोड़ता है बेटे के सामने कि बेटे मान ले। इतना फर्क आ गया, आजाद हो गया ना हिंदुस्तान, तो उसका ये परिणाम निकला। पर फिर भी अभी भारत से वो ज्योति पूर्णतः विलीन नहीं हुई है, आज भी साधु संतों के माध्यम से समय समय पर कुछ सामग्री जनता को मिलती रहती है, जिसका आलंबन पाकर जीवन का उत्थान किया जा सकता है और एक मंगलमय वातावरण भी बनाया जा सकता है। तो रैली की जो बात आई थी, ठीक है, बहुत अच्छा विचार है, पर उसमें किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले कि ये विरोध करते हैं और इन्हीं के लोग फलाने स्थान पर रात को अब आगे कहने की आवश्यकता नहीं है। माने अपने आचरण से अपना धर्म कलंकित न हो, इस बात का भी विवेक रखना आवश्यक है। आप गोवध पर प्रतिबंध डालने का प्रस्ताव ले जाओ और गाय के चमड़े से बने हुए जूते या बेल्ट पहन कर जाओ, तो इसको नाटक के सिवाय और क्या कहा जा सकता है? पर्स चमड़े के हो आपके पॉकेट में और न जाने कैसे कैसे श्रृंगार के साधन आज उपलब्ध हैं, जिनके पीछे करोड़ों प्राणियों की हिंसा हर वर्ष सिर्फ भारत में हो जाती है। तो इतनी जो अस्त व्यस्तता है उसमें अपने जीवन को साफ सुथरा बनाएंगे तो बहुत जल्दी तरक्की होगी। आप चाहो कि सरकार सुधर जाए, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। आप नीति को बहाना मत बनाओ अपनी कमियां छुपाने के लिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसा आचरण करें और ऐसा राजा बनाए कि जो सदाचारी हो? क्योंकि प्रजातंत्र है ना, आप जिसको बैठाल दे तो वो बैठ जाता वहां, और वहां से भी जिसको उतारना हो सो उतार दो। तो इसमें कम से कम अपने भविष्य के लिए, अपनी भलाई के लिए इतना आवश्यक है कि जीवन में सदाचार हमेशा बना रहे। मुख से कभी ऐसा शब्द न निकले किसी भोले आदमी को देखकर कि ये अच्छा मुर्गा फंसा। देखो कितने कठोर क्रूर शब्द हैं ये। जब कोई भोला ग्राहक आ जाता है और पैसे ज्यादा दे जाता है तो दुकानदार क्या कहता है, जो अभी अभी आपने सुना? क्या मतलब है? आप भले शाकाहारी हो लेकिन विचारों से क्या है? ये शब्द निकलने चाहिए क्या शाकाहारी के मुख से? माने भावना में वही हिंसा बैठी हुई है ना, इसलिए उस हिंसा के तत्व को अंदर से बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि अपन समझ लें कि क्या है वो, और ये स्वीकार करें सबसे पहले कि मेरे अंदर है वो। वो खराबी मेरे अंदर, खराबी कहो बीमारी कह लो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, वो बीमारी मेरे अंदर है आज, और उसका उपचार क्या है? यही अहिंसा परमो धर्म। पर एक बार अगर समझ में आ जाए कि मेरे अंदर वह हिंसा जीवित है, फिर कोई कदम उठाया जा सकता है। अभी तो स्थिति यह है कि अपन मानने को तैयार नहीं है कि हमारे अंदर ऐसी कोई बीमारी है या हमारे अंदर ऐसी कोई खराबी है। पूछें अगर तो फिर कहोगे कि महाराज हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है वो ऐसी सब बातें करता है। भाई पड़ोसी के बारे में तो कोई पूछ नहीं रहा था, आप कैसी बातें करते हो, आप कैसे रहते हो, इस पर पहले दृष्टि डालने ना। पड़ोसी को सुधारना सरल है या खुद को? अब इसका उत्तर भी देने में आपको मुश्किल पड़ रही है। देखो अपना इलाज करना सरल है, उसकी अपेक्षा तो अपनी भाषा पर काबू रखना, चाल ढाल, वेशभूषा, भोजन पानी, रहन सहन, इनको अगर आप वश में कर लो तो फिर एक नया वातावरण बन सकता है। और इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए ये बातें याद रखने की है, ये तो शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य का क्या उपचार है? हमेशा प्रसन्न रहना। आचार्य श्री बोलते हैं कि भाई योगासन न लगाओ तो चलेगा, लेकिन प्रसन्नासन लगाते रहो। आचार्य श्री के ये शब्द हैं, प्रसन्नासन। प्रसन्नासन माने हमेशा खुश। और उसके लिए कुछ और ऐसे सूत्र हैं जो मौके पर काम आते हैं। जैसे एक सूत्र यह है कि रोते हुए संकट झेलने वाले डग डग पर मिलते हैं, एक आध हंसकर झेलने वाला चाहिए। देखो ये एक ऐसा सूत्र है कि संकट आने पर भी आपको हंसी आ जाए। क्या मतलब हुआ इसका? कि रोते हुए संकट झेलने वाले डग डग पर मिलते हैं। कहीं भी देखो आप, संकट में पड़े हुए लोगों के चेहरे एकदम उतरे हुए से मिलेंगे, लेकिन संकट में हंसने वाले देखो बहुत मुश्किल से मिलेंगे। तो एक आध ऐसा व्यक्ति भी तो चाहिए, एक आध। और फिर ये भी सोचना कि ये जो परिवार मिला है मुझे, उस परिवार में सब लोग मेरे अनुकूल नहीं है। बहुत कम ऐसे परिवार होते हैं जहां सभी लोग अपने अनुकूल हों, कोई ना कोई उल्टा चलने वाला रहता ही है, एक आध ऑड मैन आउट। तो उस समय क्या मन में ऐसे नेगेटिव विचार आते हैं लोगों के कि भाई मैं इतना इसका भला चाहता हूं लेकिन ये सब उल्टा ही लेता है, माने बिल्कुल मूड खराब कर देता है। कितना भी अपन अच्छा सोचो तो इनका दिमाग उल्टा ही चलता है। ऐसा क्यों आता है भाव? उसका कारण है कि अपन कुछ अपेक्षा रखते हैं दूसरों से, और उन्हीं अपेक्षाओं में पूरा ये संसार बसा हुआ है। और उन्हीं अपेक्षाओं के कारण जितने दुख हो रहे हैं संसार में वो होते हैं। शरीर के भी दुख हो, मन के भी दुख हो, और अंदर के भी और दूसरे दुख हो, ये सब अपेक्षाओं से संबंध रखते हैं। अपेक्षा माने अपन जो चाहते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो चाहते नहीं है। और ये संसार की स्थिति है, आज से नहीं है, अनादि से है। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि जो अपन चाहते हैं वही हो जाए, पर ऐसे संयोग कभी कभी आते हैं, जैसे चौमासा हो गया। अब ये सब देखिए ना, यही तो संसार की स्थिति है। अपेक्षा, जैसे मान लो हमने अपेक्षा की कि सबको शांत बैठना चाहिए, और कोई बातें करने लग जाए तो उस अपेक्षा में धक्का लगा, अंदर खेद हो गया। खेद किसने उत्पन्न किया, बातें करने वालों ने या फिर अपनी अपेक्षा ने? तो वहां अपन विचार करके देखें, जब भी कभी आपको बुरा लगे या कोई भी बात आपको अच्छी सी न लगे, तब आप देखना कि भाई क्या कौन सी अपेक्षा है मेरे अंदर, उसकी छानबीन करो आप, पता चल जाएगा। अभ्यास करोगे तो फिर वो जल्दी पकड़ में आ जाएगी वो कौन सी अपेक्षा है। कभी कभी तो मन इतना छलिया है कि वो ऐसा घुमा देगा कि आपको लगेगा कि भाई कुछ भी नहीं अपेक्षा, फिर भी शांति नहीं है। लेकिन आप बारीकी से देखना, आप दर्शक बन करके देखना, तो पता चलेगा कि हाँ मैं ये चाहता था पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मेरा मन अशांत है। और इसके साथ साथ में एक बात और है कि परिवार में जितने लोग इकट्ठे हुए हैं इस जन्म में, तो ये कोई स्थायी संबंध ही नहीं है। ये तो ट्रेन के डब्बे में जैसे सब मुसाफिर मिलते हैं ना, अलग अलग जगह के, कोई सरदार रहता है, कोई दक्षिण भारत का रहता है, कोई यहीं महाराष्ट्र का होता है, कोई हरियाणा का भी एकाध व्यक्ति फंस जाता है वहां, तो सब मिल जाते हैं वहां पर, साथ में बैठ करके चाय पानी नाश्ता लेते हैं, हंसते हैं, कुछ अपने किस्से भी सुना जाते हैं, और फिर और भी कुछ मुलाकातें होती है, चर्चाएं होती है। और जब अपना स्टेशन आता है तब क्या होता है, तब सब अपने अपने ठिकाने पर चले जाते हैं। कोई किसी का स्थायी संबंध ही नहीं है, लेकिन संसारी प्राणी स्थायी संबंधी मान करके, जानबूझकर ऐसी ऐसी अपेक्षाएं अपने अंदर करता रहता है कि फिर जब उसके अनुकूल काम नहीं होता तो स्वयं व्यथित होता है। इसको व्यथित करने वाला कोई दूसरा नहीं है, ये अपनी ही अपेक्षाओं के कारण व्यथित है। इसलिए इसका सीधा समाधान यही है कि जब तक मिले हुए हैं मिलजुल करके रहना, और जब स्टेशन आ जाए तो फिर बस जय जिनेन्द्र। आप सोच रहे हो गुड बाय बोलेंगे महाराज, हाँ जय जिनेन्द्र। उसमें ना रोने की आवश्यकता है ना शोक करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई बिल्कुल अस्तित्व से ही नष्ट हो जाए। अस्तित्व तो हर व्यक्ति का रहता है, स्थान बदल जाते हैं, अता पता बदल जाता है, लेकिन व्यक्ति तो रहता है। पर वो यदि याद करके रोता रहे तो एक अलग बात है, वो भी अपेक्षा वाली बात है कि भाई थोड़े दिन और रहता तो अच्छा रहता, ये क्या है, अपेक्षा ही तो है ना। तो एक तो बात निश्चित हो गई कि अपनी अपेक्षाओं से दुनिया नहीं चल सकती, इसलिए दुनिया जो चल रही है उसमें केवल अपना फर्ज जितना है उतना निभा दिया, और अपेक्षाओं के चक्र में न पड़कर हमेशा हंसी खुशी के साथ समय व्यतीत करते चले गए। ये थोड़ी व्यावहारिक बात आ गई है, लेकिन फिर भी आवश्यक थी इसलिए दी जा रही है। और फिर जब विदाई होती है तो भी असंतोष नहीं, आकुलता नहीं। कभी कभी लगता है कि मेरा 10 साल का लड़का था और उसको डॉक्टर बचा नहीं पाया, 80 साल के दादा को उनने बचा लिया, 10 साल के लड़कियों को नहीं बचाया, उनको न बचाते इसको बचा लेते तो अच्छा रहता। ये भी अपेक्षा के ही कारण है। आप ये सोच लो कि बस इतना ही कर्म संयोग बना। सब इसके आगे मेरे हाथ की बात नहीं है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वियोग में जो आकुलता करने वाले लोग हैं उनकी आकुलता का ज्ञान उस प्राणी तक प्रसारित हो जाता है, माने उसको भी मालूम पड़ जाता है कि यहां पर लोग आकुल व्याकुल हैं, और वो चूंकि वहां से आ नहीं सकता यहां वापस आपके पास, तो वो भी दुखी रहता है। अगर एक बात आप ऐसी कुछ लहरें भेज दो, मतलब अपनी भावनाएं वहां तक प्रसारित कर दो कि भाई जहां भी हो सुखी रहना, हम भी यहां पर अब आकुलता नहीं करेंगे, तुम जीवित हो, तुम्हारा जीवन नया है, अच्छे से रहना, धर्म को कभी मत छोड़ना, इतनी भावना अगर प्रसारित कर दो तो फिर अपना कर्तव्य पूर्ण हो गया और वो भी फिर चिंताओं से निवृत्त हो जाए। जब तक उसको ये ख्याल रहता है कि वो लोग दुखी है, वो लोग दुखी है, तो फिर वो उसके अंदर भी बेचैनी रहती है। ऐसी भी कुछ घटनाएं हो जाया करती है। तो कषायों को शांत रखने के लिए एक तो क्या है कि कषायों को बढ़ाने का कोई काम न करें, क्रोध मान माया लोग, उनका शमन करना है शांति प्राप्त करने के लिए, तो उनको बढ़ाने के साधन न जुटाए जाए। जैसे उदाहरण के लिए आप चाहते हो कि कोई अच्छी चीज खाने को मिल जाए, और फिर उसमें क्या होता है कि अपनी मनोवृत्ति कई प्रकार की होती है, कभी कभी कुछ तीक्ष्ण पदार्थ खाने में अच्छे लगते हैं, खूब मिर्च मसाले वाली चीजें खा लेते हैं, तो तत्काल जिह्वा को तो रस आता है और थोड़ी देर के लिए तो एकदम विकल्प शून्य, आचार्य तो बोलते हैं कि निर्विकल्प समाधि जैसी हो जाती है। जब मनुष्य को इष्ट विषय मिलता है तो साधु जैसे ध्यान में लीन हो जाता है, वैसे ही वो उस विषय में लीन हो जाता है। लेकिन परिणाम क्या होता है? अब सबसे बड़ी बीमारी आज यही है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी के अंदर संतोष नाम की चीज नहीं है। होगी इने गिने लोगों के अंदर संतोष नाम की वस्तु, लेकिन वैसे नाम किसी का हो सकता है संतोष, लेकिन उसके अंदर संतोष हो ये नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए शांति की साधना करने वालों को, योगी जनों को, ध्यान का अभ्यास करने में जिनकी रुचि हो उनको भोजन संयम रखना चाहिए। कब खाना, क्या खाना और कैसे खाना, कब खाने की तो जानकारी है ही प्राय जैन समाज में, दिन में खाना है। क्या खाना, तो इतना तो सबको मालूम है कि भाई शाकाहार करना चाहिए। कैसे खाना, कितना खाना, यहां थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है। कोई अच्छी चीज सामने आ जाए तो कितना का ख्याल नहीं रह पाता, और कैसे खाना इसका भी हिसाब नहीं रह पाता। खड़े होके खाना, बैठ के खाना, किस दिशा की ओर मुख करके खाना, जैसे जैन आचार्यों ने इन सब बारीक बातों पर बड़ा ध्यान दिया है। आचार ग्रंथों को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कितना भोजन कैसे करना, ये सारी विधि दी। स्वास्थ्य लाभ के लिए लिखा है कि पूरब की तरफ मुख करके चटाई पे बैठ के भोजन करो, या फिर कोई ऐसे स्थान पर भोजन करो, छोटा पटिया हो, कोई भी ऐसी चीज हो, गद्देदार स्थान पर बैठकर भोजन नहीं करना। तो ऐसे स्थान पर बैठ करके सीधे बैठकर और भोजन प्रारंभ करने के पहले नमस्कार मंत्र का स्मरण करके, पर नमस्कार मंत्र का स्मरण करते समय थोड़ा मन शांत रखते हुए, नहीं तो फिर क्या है कि भोजन सामने आ जाता तो फिर जल्दी जल्दी हाथ चलते हैं, नमोकार मंत्र की स्पीड भी बढ़ जाती है। अच्छे शांति से करो, चिंता मत करो, ठंडा हो जाएगा भोजन, ज्यादा नुकसान नहीं है कोई। तो अच्छे एक 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया और बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में भोजन करना। ऐसा नहीं कि भोजन परोसने वाला मुस्कुरा नहीं रहा है, अच्छे से परोस नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो एकदम अपना भी चेहरा एकदम बिगड़ जाए। प्रसन्न मुद्रा में भोजन करना और अच्छे ढंग से चबा करके भोजन करना। वैद्य जी से आप पूछ सकते हैं कि कितने बार एक ग्रास को चबाना। कहते हैं कि पेय पदार्थों को धीरे धीरे पीना और जो खाद्य पदार्थ है, चबाने योग्य पदार्थ है, उनको एकदम रसदार बना करके फिर गले के नीचे उतारना, माने वो तरल बन जाए मुख में चबाते चबाते। शायद 30-32 बार एक ग्रास को चबाने का आता है कहीं आयुर्वेद में। कितने बार? बिल्कुल ठीक बात। और देखिए पानी को भी जल्दी जल्दी पीने से क्या होता है कि जो अपने स्पिरिचुअल पावर्स हैं, साइकिक एनर्जीज, उसमें लॉस होता है। ये जितने जादूगर हैं, मेस्मेरिज्म हिप्नोटिज्म करने वाले लोग हैं, उनको ये शिक्षा दी जाती है शुरू में कि पानी जल्दी जल्दी नहीं पीना, धीरे धीरे पानी पीना। पर रेफ्रिजरेटर का पानी मिल जाए तो फिर वो धीरे धीरे वाला काम ही नहीं हो सकता। तो ये सारी है छोटी छोटी चीजें, लेकिन इन बातों को कोई कहां तक बदला है वो तो जितना स्वाध्याय करेंगे, जितना अध्ययन करेंगे। और इनको जीवन में अपनाना बहुत आवश्यक है। जैसे पूर्व दिशा की ओर बैठ गए आसन पर बैठ करके फिर भोजन कर रहे हैं, क्योंकि पैर लटकाकर भोजन करना भारतीय पद्धति नहीं है। पर अब तो पूरे डाइनिंग टेबल्स आ गए लोगों में घर पे। डाइनिंग टेबल का मतलब क्या? जिस पर रात्रि भोजन किया जाए वो टेबल डाइनिंग। डाइन माने क्या? डिनर जिस पर होता है, डिनर यानी रात का खाना। वो पद्धति है नहीं। सनातन धर्म में भी रात्रि भोजन को वर्जित माना गया है। अब दिक्कत ये आ गई है कि भारतवासी इन सब चीजों का आज के युग में पालन नहीं करते और नए नए तर्क उपस्थित करते हैं अपनी स्वच्छंदता को पुष्ट करने के लिए कि भाई उस जमाने में लाइट नहीं थे और उस जमाने में ऐसा था वैसा था। सारे जो प्रयोग दिए गए हैं कैसे भोजन करना और ऐसे टेढ़े तिरछे बैठ करके भी भोजन नहीं करना, जाप कैसे करना, इन सब बातों का बड़ा विशद विवेचन माने गुरु परंपरा से ही चला आता था। और जाप हाथ से करो तो बहुत अच्छी बात है, जाप माला से करते हो तो माला जिस चीज से बनी है वह वस्तु शुद्ध हो। इसीलिए अभी एक पुस्तक निकली थी, उसमें देखा श्वेतांबर बंधु ने लिखी थी, उसमें लिखा था कि ये कांच की माला, प्लास्टिक की माला, ये कांच प्लास्टिक जो है मिश्रित पदार्थ है, इनसे जाप न करते हुए सूत की माला है या फिर और भी दूसरे पदार्थ हैं जो बिल्कुल प्योर हो, मिलावटी न हो,
अब कांच कैसे बनता है आप जानना, इस प्राणी का कोई सहारा। तीनों प्रकार के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और शरीर के प्रति भी कठोर नहीं होना है और नरम भी नहीं होना है, दोनों बातें ध्यान रखना। नरम हुए तो फिर शरीर कठोर हो जाता है आपके प्रति, और ज्यादा कठोर हुए तो फिर वो साथ देना बंद कर देते हैं। तो बैलेंस पर फिर भी जीवन की ये जो बातें हैं ये बहुत महत्व रखती है, इसलिए इनको कभी नजरअंदाज नहीं करना। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु इनको सदा नमन। इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हूँ मेरे मन वचतन, इनकी ही भक्ति में हूँ